पीयू बसे पहाड़ में, मैं यमुना को तीन। अब तो मिलना मुश्किल है, मेरे पैरों में पड़ी जंजीर। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊँ रे कन्हैया, कैसे आऊँ रे कन्हैया। बड़ी दूर नगरी तेरी गोकुल नगरी। कैसे आऊँ रे कन्हैया, कैसे आऊँ रे कन्हैया। बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
दूर नगरी बड़ी दूर नगरी,
दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
रात में आऊँ तो काना डर मोह लागे,
रात में आऊँ तो काना डर मोह लागे।
रात में आऊँ तो काना डर मोह लागे,
रात में आऊँ तो काना डर मोह लागे।
दिन में आऊँ तो देखे, दिन में आऊँ तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊँ रे कन्हैया, कैसे आऊँ रे कन्हैया। तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी।
कैसे आऊँ रे कन्हैया, कैसे आऊँ रे कन्हैया। तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी।
सखी संग आऊँ काना शर्म मोह लागे,
सखी संग आऊँ काना सखी संग लागे।
सखी संग आऊँ काना शर्म मोह लागे,
सखी संग आऊँ काना शर्म मोह लागे।
एक लिया मुँह तो काना, एक लिया मुँह तो काना। भूल जाऊ डगरी बड़ी दूर नगरी।
कैसे आऊँ रे कन्हैया, कैसे आऊँ रे कन्हैया। तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी।
कृष्ण को मिलना होता था परंतु मिल नहीं पाती थी, परंतु जैसे ही कृष्ण ने बंसरी बजाई सब गोपियां अपने अपने स्थानों को छोड़कर, समस्त गोपियां कृष्ण को मिलने के लिए यमुना के तट पर पहुंची। और यमुना के तट पर अद्भुत रास प्रारंभ हुआ। उस रास में अनेक गोपियां, 33 करोड़ गोपियों ने भाग लिया और समस्त गोपियों ने, प्रत्येक गोपी के साथ एक एक कृष्ण थे। अद्भुत रास, कृष्ण हमारे ही साथ है, हमारे साथ रास कर रहे हैं, यह सोचकर सबको अभिमान हुआ और श्रीमती राधा रानी को मान हो गया। बोले आज कृष्ण मुझे छोड़कर सबके साथ। कृष्ण से रुठकर राधा चली गई, कृष्ण राधा को ढूंढने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। सभी गोपियां विवल हो गई, यहां तक कृष्ण राधा को भी छोड़ दिए। और राधा समेत समस्त गोपियां कृष्ण को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते कृष्ण का अन्वेषण किया परंतु कृष्ण मिले नहीं। तब समस्त गोपियों ने विचार किया कि भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर भगवान के भक्त गीत गाते हैं वहां पर भगवान प्राप्त होते हैं। समस्त गोपियां यमुना के किनारे पर आई और गोपियों ने बहुत सुंदर गीत गाया। भागवत के दशम स्कंद के 31वें अध्याय में यह गीत अद्भुत रूप से वर्णन हुआ है, जिसे गोपी गीत कहा गया है। श्री गोप्य उचुहो जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि
जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि
दैत्य दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि गीता सव त्वां विचिन्वते
दैत्य दृश्यतां
गाइए सभी भक्त
त्वां विचिन्वते
शरद दासये साधु जात सरसी जोदर श्री मुषादिशार
शरद दासये साधु जात सरसी जोदर श्री मुषादिशार
सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरदनी न तो नेह किंवर
सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरदनी न तो नेह किंवर।
गोपियां भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रही हैं, गोपियां भगवान से भगवान को पुकार रही है कि हे कृष्ण, जिस दिन से आपका ब्रज में जन्म हुआ है उस दिन से यह ब्रज अधिक जय को प्राप्त हुआ है। जिस दिन से आप इस ब्रज में आए हो उस दिन से साक्षात लक्ष्मी देवी इस ब्रज में आकर उपस्थित हो गई है। हे कृष्ण, आपने ब्रज में रहने वाले सबको सौभाग्य दिया, आज आप हमें सौभाग्य दे दीजिए, आपका दर्शन करा दीजिए। प्रभु, इस संसार में जो दासियां होती हैं, जो नौकरानी होती हैं, वो तो पैसे लेती हैं, हम तो बिना पैसे वाली हैं, आपकी दासी हैं, कृपया करके आप हमें दर्शन दे दीजिए।
विष जलाप्ययान व्याल राक्षसा वर्ष मारुतान वैधुतान
विष जलाप्ययान व्याल राक्षसा विष मारुतान वैधुतान
वृष मयात्मजान विश्व तो भया ऋषभते वयम रक्षिता मुहो
ऋषभयात्मजा विश्व तो भया ऋषभते वयम रक्षितो मुहो।
हे प्रभु, हे पुरुष शिरोमणि, हे समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ, आपने यमुना के विषैले जल से हमारी रक्षा की, आपने अगासुर वकासुर बड़े बड़े असुरों से हमारी रक्षा की, आपने इंद्र के वर्षा से हमारी रक्षा की, आपने वृषभासुर से हमारी रक्षा की, आपने व्योमासुर से हमारी रक्षा की, अब प्रभु जीवन में एक बार हमारी रक्षा कर दीजिए, एक बार आपका दर्शन दे दीजिए। गोपियां रोते हुए कह रही है, हे प्रभु, आप नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो, यदि आप नंद और यशोदा के पुत्र होते तो आपको दया आ गई होती। हम सत्य कह रही हैं कि आप नंद यशोदा के पुत्र नहीं हो।
नखल गोपिका नंद नो भवान अखिल देह नाम अंतरात्म देख
नखल गोपिका नंदनो भवार अखिल देहिनाम अंतरात्म देख
विखन सार्थितो विश्व गुप्त ये सखौ देवान सात्वताम कुले
आप यशोदा के पुत्र नहीं आप संसार के सभी जीवों के हृदय में रहने वाले परमात्मा हो जो इतना इतना दुख देखने के बाद भी जीवों को दर्शन नहीं देते हैं
विरचिता भयम विष्णु दूर्यते चरण संश्रुते भया
विरचिता भयम वृष्णि दूर्यते चरण मीयुषा संश्रुते भया
कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहिना श्रीकर
गिना नहीं रही है परंतु कह रही है कि आपके लिए हमने हमारे बच्चों को छोड़ा प्रभु आपके लिए हमने हमारे पति को छोड़ा आपके लिए हमने हमारे सास ससुर को छोड़ा आपके लिए हमने हमारे संसार को छोड़ा और फिर भी हम आपसे और कुछ नहीं मांग रही है न धनम न जन्म न सुंदरी न तो हमको धन चाहिए न जन्म चाहिए न गाड़ी बंगला नौकर जाकर हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु एक चीज आप दर्शन देकर अपना श्रीकर अपना वरद हस्त हमारे मस्तक पर रख दीजिए एकमात्र हमारी इच्छा है गोपियों की इच्छा है कि अपना कर कमल अपना प्रभु आपका हाथ हमारे मस्तक पर रखिए
व्रज जनार्ती हन प्रेरयोषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मृत
निज जनार्ति हन प्रेरयोषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मृत
भज सखे भवान किंकरी स्मनो जल रोहाननम चारु दर्शय
भज सखे भव किं करिष्मितो जल रोहाननम चारु दर्शय
हे प्रभु आपकी मंद मंद मुस्कान आपकी हंसी हमारे गर्व को नष्ट करने वाली है प्रभु आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है कि आप हमसे प्रेम करो कमल के समान आपका श्रीमुख कृपा करके दिखाओ हमें दर्शन प्रदान करो
प्रणत देहिना पाप कर्षनम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम
प्रणत देहिना पाप कर्षनम
कृष्ण के चरणों की महिमा बता रही है
फणिपनार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषुना क्रिन्दिरेच्छयम्
फणिपनार्पितम्
हे कृष्ण आपके चरण कमल
कृणुकुचेषुना
प्राप्त करके कालिया नाग का समस्त विष समाप्त हो गया है हे प्रभु इस संसार के जो लोग आपके चरणों का ध्यान करते हैं उनके हृदय का समस्त पाप जलकर भस्म हो जाता है पाप कर्षण हे प्रभु आप नंगे पांव से पशुओं के पीछे दौड़ते हो प्रभु आपने पशुओं के ऊपर कृपा की हम दासियों के ऊपर एक बार कृपा कर दीजिए आप एक बार हमें दर्शन दे दीजिए, हमारे इस विरह अग्नि कामाग्नि को शांत कर दीजिए।
मधुर या गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण,
मधुर या गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण,
विधि करीरिमा मिह्यमूयति अधर सिंधुना
प्रभु। हमने आपको जाना नहीं, हमने आपको पहचाना नहीं, हम आपके विषय में ज्यादा तो नहीं जानती हैं, परंतु आपके नेत्र आपकी आंखों की कटाक्ष से हम आपकी प्रेमी बन चुकी हैं। अब आपके अधर का दिव्य रस पान करा के हमें कृतार्थ करो। इस प्रकार से गोपियां कृष्ण को बुला रही है, पुकार रही है, मानो उस समय कृष्ण प्रकट हो जाए और प्रकट होकर कहे कि हे गोपियों, मैं तो आपके बीच में से कभी का चला गया था और मेरे विरह में आप अब तक जीवित हो, क्योंकि मैं आपके प्राण के समान हूं। मैं जानता हूं जैसे मछली पानी से प्रेम करती है, बिना पानी के मछली रह नहीं पाती है, वैसे आप बिना कृष्ण के रह नहीं पाते। मैं जानता हूं, मैं आपके पास नहीं था, मैं आपके सामने नहीं था, फिर भी आप अब तक जीवित हो, इसका कारण क्या है? गोपियों ने कहा, कृष्ण आपके विरह में हम मर चुकी थी, मर जाने वाली थी, परंतु आपके विरह में आपकी कथा हमें जिला रही है, आपकी कथा सुन सुनकर कृष्ण आपकी कथा में हम आपका दर्शन कर रही है, और आपका दर्शन करके आपकी कथा सुनकर आज हम जीवित हैं।
तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम,
तव कथामृतम।
शास्त्र का प्रसिद्ध श्लोक
कविभिरीडितम,
भगवत कथा की महिमा।
तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम,
तव कथामृतम तप्त जीवनम।
सभी लोग प्रेम से
कविभिरीडितम
श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदार्जना,
स्वर्ण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदार्जना,
प्रहसितम प्रिया प्रेम वीक्षण विरहण चते ज्ञान मंगलम,
प्रहसितम प्रिया प्रेम वीक्षण विहरण चे ज्ञान मंगलम,
रहस्य संविदो यारिदि स्पृश कुहकनो मन शोभयन्ति,
रहसि संविदो यारिदि स्पृश कुहकनो मन शोभयन्ति।
हे प्यारे श्याम सुंदर, आपका हंसना प्रेम पूर्वक तिरसी चितवन से देखना, आपका विहार करना, ये सब मंगलकारक है, और आपने एकांत में अकेले में हमसे हृदय स्पर्शी जो बात की है, हमसे हृदय स्पर्शी जो ठिठेलियां की है वो सब हमें आज याद आ रही है। कृष्ण आप अपना दर्शन देकर हमें कृतार्थ करो, हमें सुखी करो।
चल सियद व्रजा चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम।
चल सियद व्रजा चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम।
शिलकुरे सीदती न कलिलतामना कांत गच्छति।
शिलकुरे सीदती न कलिलतामना कांत गच्छति।
हे प्रभु हम आपको देखना चाहती हैं, इसलिए नहीं हम हमारे लिए नहीं, प्रभु आप जब उस पशुओं के पीछे गाय और बछड़े के पीछे नंगे पांव चलते हो और वन के कांटे कंकर पत्थर जब आपके चरणों में छूते हैं लगते हैं हमारे हृदय में घाव हो जाते हैं। और प्रभु आप गहरे वन में चले गए हो और उस गहरे वन में आपको कंकर पत्थर कांटे लग रहे होंगे, प्रभु आपका दर्द ये हमारा दर्द है, आपके चरणों में लग रहा है प्रभु परंतु दर्द हमारे हृदय में हो रहा है, कृपया करके आप हमें दर्शन दीजिए।
दिन परीक्षये नीलकुंतले वनरुहानम विभ्रदावृतम।
दिन परीक्षये नीलकुंतले वनरुहानम विभ्रतावृतम।
धनरजस्वलं दंशयन् मुहुः मनसि न स्मरं वीरयच्छसि।
धनरजस्वलं दंशयन् मुहुः मनसि न स्मरं वीरयच्छसि।
आपके व्रत से लौटते हुए गायों से गिरते हुए जब आप लौटते हो और गायों के चरणों से उड़ी हुई रज जब आपके मस्तक पर लगती है और आपकी अलके जब लटक रही है, वह दृश्य आज हमारे हृदय में याद आ रहा है, वह चितवन आज हमारे चित को शुभित कर रही है। हे कृष्ण कृपया करके आप अपना दर्शन दीजिए।
प्रणत कामदम पद्मजार्चितं धरणि मंडनं ध्येयमापदे।
प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणि मंडनं ध्येयमापदे।
चरण पंकजं शंतमं चते रमणनस्तने स्वर्पयादिहं।
चरण पंकजं संततं चते रमणनस्तने स्वर्पयादिहं।
सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शुष्टुचुम्बितम्।
सुरतवर्धनं शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्टुचुम्बितम्।
इतरराघवी स्मारणं विना वितरवीरना ते धरामृतम्।
इतरराघवी स्मरणं विना वितरवीरना ते धरामृतम्।
हरे कृष्णा
श्री कृष्ण चंद्र भगवान की
जय।
इस प्रकार से अनेक श्लोकों में गोपियां भगवान को पुकार रही हैं। गोपियों के द्वारा यह गीत और इस गीत को सुनकर यह गीत के अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रुरुदु सुस्वरम राजन, हे राजन, ये समस्त गोपियां इस गोपी गीत के अंत में एक साथ एक स्वर में रोने लगी। और जब ये गोपियां रोने लगी तब भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए हैं। कृष्ण ऐसे ही प्रकट नहीं होते हैं, रुला देते हैं, रोना पड़ता है, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, तब जाकर कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण आए, आसन प्रदान किया, कृष्ण बैठे, सब ने जी भर के कृष्ण का दर्शन किया और फिर से रासलीला प्रारंभ हुई। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण गोकुल वासियों को छोड़कर अक्रूर जी के साथ मथुरा चले जाते हैं। गोकुल में रहने वाले समस्त लोग कृष्ण के विरह में आज रो रहे हैं। जो कृष्ण सबके घर पर चोरी करते थे, बहुत सुंदर सबसे बात करते थे, समस्त गोप गोपी सखा गाय बछड़े अपने सब प्राण प्रियों को छोड़कर अपनी लीला को आगे बढ़ाने के लिए कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। अक्रूर जी के साथ मथुरा गए। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने धोबी का वध किया, सुदामा नाम के माली का उद्धार किया, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया, कुबजा का उद्धार किया, चाणूर और मुष्टिक को मारा और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने निर्दयी पापी खल कंस का वध किया। तत्पश्चात जरासंघ के साथ युद्ध करते हुए भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका चले गए। द्वारका में भगवान की अद्भुत नगरी, विश्वकर्मा ने सोने से वह नगरी निर्माण की। भगवान श्री कृष्ण चंद्र द्वारका में रहने लगे, रुक्मणी के साथ विवाह किया, जामवती के साथ विवाह किया, सत्यभामा के साथ। 16,108 पटरानी थी। सुखदेव गोस्वामी एक कृष्ण के मित्र की कथा सुनाते हैं। कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्म वित्तमः विरत्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। कृष्ण के एक सखा थे जिसका नाम था सुदामा। गुजरात स्थित पोरबंदर में रहते थे, परंतु गरीबी की हद हो गई। पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं। 10-10, 15-15 दिन से बच्चे भूखे थे, भोजन नहीं मिला। और सुदामा का एक व्रत था, मर जाएंगे परंतु किसी से मांगेंगे नहीं। मांगने से व्यक्ति छोटा हो जाता है, अयाचक वृत्ति जिसे की जाती है। जीवन में मर जाएंगे परंतु किसी से याचना नहीं करेंगे। सुदामा कभी भी किसी से मांगे नहीं थे। बहुत बड़ी गरीबी। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने प्रणाम करके कहा कि मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे तकलीफ नहीं है, आप कुछ नहीं खाए तकलीफ नहीं, परंतु बच्चों के सामने देखा नहीं जा रहा है, प्रभु अब कुछ करो। बोले क्या करूं? बोले मैंने सुना है आपका बहुत बड़ा मित्र जिसका नाम कृष्ण है सोने की द्वारका में रहता है, एक बार मिलकर तो आइए। मैं जानती हूं कि आप कभी भी किसी से मांगोगे नहीं, मर जाओगे परंतु मांगोगे नहीं, परंतु एक बार कृष्ण का दर्शन तो करके आओ, दर्शन से हमारे जीवन में सुख आ जाएगा। तो सुदामा जी ने सोचा, अयम ही परमो लाभो कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण से कुछ मांगने के लिए नहीं, कृष्ण का दर्शन करने के लिए सुदामा निकले। देखो पत्नी हो तो ऐसी है, एक पत्नी होकर पति को कृष्ण के पास भेज रही है, जाओ आप कृष्ण के पास, कृष्ण से मिलकर आओ। और आज की पत्नी बेचारे पति कुछ धर्म करना चाहते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं, बोले वहां क्या है, यहां घर पर ध्यान दो, मंदिर में मत जाओ। परंतु सुदामा की पत्नी वास्तव में पत्नी थी, अपने पति को भेजा, जाओ कृष्ण के पास। सुदामा गए, नाम सुदाम मित्र प्रभुनो। धीरे धीरे चलते हुए, बहुत सूखा हुआ देह है, हाथ में लकड़ी के सहारे चल रहे हैं, और धीरे धीरे चलते 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 वे द्वारका नगरी के द्वार पर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, और द्वारका नगरी के द्वार पर अनेक द्वारपाल खड़े थे, और पूछा सुदामा को कहां जाना है। सुदामा ने कहा कि मुझे कृष्ण से मिलना है। बोले कौन है कृष्ण आपके, कृष्ण से क्यों मिलना है। बोले कृष्ण मेरा मित्र है। दसों द्वारपालों ने मजाक करते हुए सुदामा को कहा, कृष्ण को द्वारका में कुछ कमी पड़ गई है कि तेरे जैसे भिखारी के साथ मित्रता करेंगे। स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र भी कृष्ण के साथ मित्रता करने में लज्जा महसूस करता है, और तू भिखारी होकर कृष्ण से मित्रता करने चला है। सुदामा ने कहा, नहीं मैं उनका मित्र हूं। परंतु सुदामा की बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, कोई विश्वास नहीं किया। एक द्वारपाल ने तो धक्का मार के गिरा दिया, तेरे जैसे बहुत आते हैं यहां पर, वापस चला जा। दुर्बल देह सुदामा गिर गए, और गिरते गिरते सुदामा ने इतना ही कहा कि मैं मर जाऊंगा, यदि मेरे प्राण छूट भी जाए तो मेरे पर एक कृपा कर देना, जब कृष्ण इस द्वार से निकलेंगे तो कृष्ण को कह देना कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया था। तब भी कृष्ण अपने आंखों से आंसू बहाकर रोएंगे। इतना सुनते ही एक द्वारपाल को दया आ गई और गए कृष्ण के पास। उस समय भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठे थे, और द्वारपाल आया, और द्वारपाल कृष्ण ने कहा, क्या हुआ, कौन आया। बोले शीश पगान जगातन में, जाने को आए बसे कही गामा, धोती पटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपान की नहीं सामा। शीश पगा, पांव में कुछ नहीं है, फटी हुई धोती है, हाथ में लकड़ी है, और अपने दुर्बल देह पे देह से आया है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहियो चकिसो वसुदा अभिरामा। द्वार पर खड़ा है और आपकी राह देख रहा है प्रभु, वे आपसे मिलना चाहता है। अनंत कोटि ऐश्वर्य के स्वामी कृष्ण ने कहा कि आपने उसका नाम पूछा। तब द्वारपाल ने कहा, पूछत दीन दयाल को धाम। जब मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जब द्वारपाल के मुख से सुदामा शब्द सुना, कृष्ण सोने के सिंहासन से कूद गए और द्वारका नगरी में दौड़ने लगे। द्वारका के रहने वाले सभी लोग सोचने लगे, आज तक कृष्ण तेज गति से चले नहीं है, आज कृष्ण इतने दौड़ क्यों रहे हैं, कौन आया है, किसके विरह में किसको लेने के लिए कृष्ण जा रहे हैं। और सुदामा रास्ते में खड़े थे, कृष्ण ने सुदामा को उठा लिया, कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया, और कृष्ण के सुदामा की इस दीन दशा को देखकर कृष्ण के आंखों में आंसू आ गया। कहा, मित्र ऐसी स्थिति, एक बार तो मुझे याद कर दिया होता, एक बार मुझे याद कर लिया होता तो मित्र ऐसी स्थिति तुम्हारे जीवन में ना आई होती। कृष्ण बार बार कह रहे हैं, सुदामा को अपने गोद में उठाकर कृष्ण अपनी नगरी में, अपने घर भर लाते हैं। सुदामा को सोने के सिंहासन पर बिठाया, सुदामा के चरण धोने के लिए कृष्ण ने पात्र मंगाया, अपनी पत्नियों से जल मंगाया। कृष्ण नीचे बैठे हैं, सुदामा ऊपर आसन पर बैठे हैं, और जैसे ही कृष्ण सुदामा का चरण धोने के लिए अपना हाथ रखे, कृष्ण ने देखा ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोये, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते किते दिन खोए। हे सखा, हृदय में बहुत दुख हो रहा है कि तुमने यहां पर आने में देर क्यों कर दी। मित्र तुमने देर क्यों की, पहले ही आ गए होते। और सुदामा के चरणों में जब कृष्ण की दृष्टि गई, अनेक कांटे कंटक बिवाई लगे हुए थे, खून निकल रहा था। सुदामा की इस दीन दशा को देखकर, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण करुणा का सागर है, परंतु सुदामा की दीन दशा को देखकर आज करुणा का सागर रोने लग गया। कृष्ण की आंख से आज आंसू निकल गया कि मेरे भक्त की, मेरे मित्र की ऐसी स्थिति। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर आत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भक्तो, उस सुदामा के चरण को धोने के लिए भगवान को पानी की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आंखों के जल से ही सुदामा के चरण को धो दिया। कृष्ण के आंखों से आज इतना आंसू निकल गया। ये है भगवान की मित्रता। भगवान भी रोते हैं अपने भक्त के दुख को देखकर। इस प्रकार सुदामा का आगमन किया। भागवत में बहुत लंबी कथा है। सुदामा अपने घर से दो मुट्ठी पौवा लेकर आए थे, चावल लेकर आए थे। कहा, मित्र इतने दूर से आए हो, मेरे लिए कुछ लाए नहीं हो। सुदामा छिपा रहे थे कि अब दिखाऊंगा तो इनकी पत्नी क्या सोचेगी। भगवान कृष्ण ने वो चावल को ले लिया और कृष्ण उसे खाने लगे। कृष्ण जैसे जैसे खाते जा रहे हैं, वैसे वैसे कृष्ण की आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। रुक्मणी ने कहा कि प्रभु आज आप इतने रो क्यों रहे हैं। एक संत बहुत सुंदर भाव देते हैं, उस समय कृष्ण ने इतना ही कहा कि जो आनंद सुदामा के इस दो मुट्ठी चावल में है, वो आनंद द्वारिका के 56 भोग में नहीं है। प्रिय प्रिय क्या बताऊं, आज सुदामा की यह चावल खाकर मुझे मेरी मां यशोदा की याद आ गई, मुझे गोकुल की याद आ गई, मुझे ब्रज की याद आ गई। और जैसे ही यहां पर लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण ने जब वह चावल खाए और वहां पर सुदामा की दरिद्रता को नष्ट कर दिया भगवान ने, सुदामा को भगवान ने आदेश दे दिया विश्वकर्मा को, जाओ सुदामा पहुंचे उनके पहले, मैं जैसी द्वारका में रहता हूं ऐसी द्वारका खड़ी कर दो, ये मेरा मित्र है, मेरा भक्त है, और मेरा भक्त इतनी दुखी स्थिति में हो नहीं सकता। सुदामा पहुंचे उनके पहले तो वहां द्वारका नगरी खड़ी हो गई, परंतु यहां सुदामा एक बार भी यह नहीं कहा कि मुझे 2 रुपया चाहिए या 10 रुपया। सुदामा वापस लौट रहे हैं। कृष्ण ने सुदामा को विदाई दी। कृष्ण सुदामा से दूर नहीं हो रहे हैं। सुदामा बार बार कह रहे हैं कि अब नाथ आप वापस लौट जाओ, मैं चला जाऊंगा, आप वापस लौट जाइए, मैं चला जाऊंगा। परंतु कृष्ण सुदामा को छोड़ नहीं पा रहे हैं। अंत में सुदामा ने शपथ दी कि प्रभु अब आप एक कदम भी चलेंगे तो आपको मेरी कसम। कृष्ण वहीं पर रुक गए। सुदामा चलते चलते जा रहे हैं और कृष्ण एक दृष्टि से सुदामा को देख रहे हैं और कृष्ण की आंखों में आंसू आ रहा है। उद्धव जी रुक्मणी खड़ी हैं और कृष्ण इतना ही कह रहे हैं कि आज मैं चाहता तो मैं मेरे सोने के रथ के ऊपर बिठाकर सुदामा को अपने घर पर भेजता। मेरे पास रथ की कोई कमी नहीं है, आज सुदामा को अपने रथ पर बिठाकर उनके घर पोरबंदर पर भेज सकता था। लेकिन उद्धव, उद्धव एक इतना पवित्र ब्राह्मण है कि आज यह ब्राह्मण मेरी द्वारका में आया, मेरी द्वारका को पवित्र कर दिया। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। रुक्मणी ने कहा कि प्रभु, आपने उनको एक बार तो कह दिया होता कि आपके वहां द्वारका नगरी खड़ी हो गई है, वहां सुख मिल गया है। आपने उसे कहा नहीं, बेचारे को रास्ते में कितना दुख होगा, दर्द होगा। तब भगवान ने इतना ही कहा, जब मांगने वाला नहीं मांग रहा है तो मैं देने वाला हूं, जब मांगने वाला कुछ नहीं बोल रहा है तो मैं देने वाला कैसे बोल सकता हूं कि मैंने आपको दिया। भगवान की आंखों में आज आंसू की धार हो गई, अजस अविरत अश्रु धारा बह रही है। उद्धव जी और रुक्मणी जी पूछ रहे हैं, प्रभु आज आपको इतना रोना क्यों आ रहा है? आपने उसको द्वारका नगरी दे दी, इतना ऐश्वर्य सुख भोग सब कुछ दे दिया, फिर भी इतना रो क्यों रहे हैं? तब कृष्ण ने इतना ही कहा कि उस ब्राह्मण ने जो मुझे दिया है ना, वो ब्राह्मण ने जो मुझे दिया है उनके बदले में मैंने उस ब्राह्मण को कुछ नहीं दिया। बोले इतना कुछ तो दे दिया। बोले ब्राह्मण ने दो मुट्ठी चावल वह भी दूसरों के पास से मांग कर लाकर मुझे दिया था, और मुझे जब उनको द्वारका नगरी देनी हुई मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ा। भगवान यही सोचते हैं कि मैंने मेरे भक्त को कुछ नहीं दिया। ये है कृष्ण। भक्तों, कृष्ण परम ईश्वर है, सबके स्वामी है, सुप्रीम, सबके नाथ है, अनेक लीला। ये भागवत में यही बात प्रस्तुत होती है। और यहां तक कृष्ण ब्रह्मा जी के भी ईश्वर है। कृष्ण का एक नाम है केशव, क का अर्थ होता है ब्रह्मा, ईश माने शिव। जो ब्रह्मा और शिव का भी ईश्वर है उसे केशव कहा जाता है। भक्तों, संसार में कुछ लोग भागवत सुनते हैं परंतु भागवत का सार नहीं समझ पाते। और कौन क्या है, इंद्र कौन है, शिव कौन है, गणेश कौन है, ब्रह्मा कौन है, कृष्ण कौन है, कहते हैं सब लोग समान हैं, सब एक हैं, एक कुछ नहीं है। कभी कभी हम लोग कहते हैं ये 33 करोड़ देवी देवता अलग हैं, शिव जी अलग हैं, और ये सबके ईश्वर कृष्ण है। तो कुछ लोग कहते हैं आप भेद क्यों कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, आप भेद कर रहे हो। जब भगवान की बात आती है कहते हैं आप भेद करते हो, देवताओं में, कृष्ण में, शिव जी में, सब भगवान है, सब भगवान। जिन लोगों में बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, वे लोग कहते हैं सब एक है। कहते हैं ना, सभी रास्ते एक जगह पर जाते हैं। क्या सभी रास्ते एक जगह पर जाते हैं? आपको हरिद्वार जाना है तो कोई भी रास्ता पकड़ लोगे हरिद्वार पहुंच जाओगे? नहीं, भगवान भगवान है। अब देखिए भागवत में ये 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा शिव अनेकों बार भगवान विष्णु के पास गए सहायता के लिए। शिव जी अनेकों बार कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए। क्या बुद्धि नहीं चलती है कि इसमें ईश्वर कौन है, भगवान कौन है? भागवत का प्रतिपाद्य विषय कृष्ण है, सबके सुप्रीम, सबके ईश्वर एकमात्र कृष्ण है। एक बार भागवत के अंत में एकादश स्कंद में कथा आती है, एक असुर था, उन्होंने बहुत तपस्या की और तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? बोले ऐसा वरदान दो जिसके ऊपर मैं मेरा हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु, और उस दिन से उसका नाम हुआ भस्मासुर। अपना हाथ किसी के ऊपर रखे तो भस्म हो जाए, इसलिए भस्मासुर उसका नाम हुआ। और उस समय शिव और पार्वती दोनों साथ में खड़े थे। भस्मासुर ने देखा साथ में बहुत अच्छी स्त्री है, शिवजी का वरदान अब शिवजी के मस्तक पर ही रखने गया। बोले शिवजी के ऊपर हाथ रख दूंगा, शिवजी को मार डालूंगा और पार्वती को लेकर चला जाऊंगा। असुर तो आखिर असुर ही होते हैं। तो जैसे ही वह भस्मासुर शिवजी के ऊपर हाथ रखने गया, शिवजी वहां से भागे। भागवत में यह कथा है, शिवजी आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे पीछे, बहुत पीछा किया और भस्मासुर ने पीछा नहीं छोड़ा। तब शिवजी ने अपने प्रभु कृष्ण को याद किया, कृष्ण तुरंत प्रकट हुए। भोलेनाथ कहां भागे जा रहे हो? बोले प्रभु भस्मासुर मेरे पीछे पड़ा है। बोले आप चिंता मत करो, आप जाओ, मैं संभाल लेता हूं। तब कृष्ण ने बाल ब्रह्मचारी का रूप ले लिया और भस्मासुर आ रहा था दौड़ते दौड़ते। बाल ब्रह्मचारी का रूप ले हुए कृष्ण ने कहा कि कहां जा रहे हो भस्मासुर जी? बोले वो शिव जी को पकड़ने के लिए, उनको मारना है। बोले शिव जी को मारोगे? कैसे मारोगे? बोले शिव जी ने ही मुझे वरदान दिया है कि जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा, मैं उन्हीं के ऊपर हाथ रखने जा रहा हूं। बोले बस, हंसते हुए कहा कि आप वो शिव जी की बात में आ गए? बोले क्यों? बोले जिस दिन से दक्ष प्रजापति ने यज्ञ से निकाल दिया है उस दिन से शिव जी की सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है, उसके जितने भी वरदान हैं सब विफल जाते हैं। बोले तुम भी शिव जी की बातों में आ गए? बोले तुम्हारे जैसे बुद्धिमान शिव जी की बातों में आ गए? शिव जी में कोई शक्ति नहीं है और ये वरदान वरदान सब झूठा है, और यदि विश्वास नहीं है तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो। भस्मासुर को कैसे भी करके कृष्ण ने अपने वश में कर लिया और भस्मासुर ने कहा आपकी बात तो सत्य है, चलो मैं देख लेता हूं। वैसे अपना हाथ अपने ही सर पर रखा और भस्म जल कर राख हो गया। इस प्रकार कृष्ण की कृपा से शिव जी बचे। क्या यह सब लीलाओं से आपको जानकारी नहीं मिल रही है कि श्रेष्ठ कौन है? महाभारत के अनेक प्रसंग में आपने देखा, जब पांडव गण वनवास में थे और वनवास में दुर्वासा ऋषि आए, कहा कि 10,000 शिष्यों के साथ हमारा भोजन तैयार करो। युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया ठीक है, आप स्नान करके आइए। और घर जाकर देखा तो अक्षय पात्र धोकर रख दिया था, और यदि दुर्वासा के लिए भोजन नहीं बनाए तो दुर्वासा ऋषि श्राप दे देंगे। और उस समय पांडव की पत्नी द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया, कृष्ण तुरंत आकर खड़े हो गए। बोले क्या हुआ? बोले दुर्वासा ऋषि आए हैं, यदि भोजन नहीं कराएंगे तो हमें श्राप दे देंगे, मर जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, अक्षय पात्र कहाँ है? बोले वो तो धोकर रख दिया है। बोले लाइए। अक्षय पात्र में एक चावल का दाना था। भगवान श्री कृष्ण ने वह एक चावल का दाना अपने मुख में रखा, उनका पेट भर गया, डकार आई। महाभारत प्रमाण है, उस समय इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों को डकार आई, सभी जीवों का पेट भर गया। आप कथा जानते हैं, ये हमारा इतिहास 5,000 वर्ष पहले का। कृष्ण ने भोजन किया, ब्रह्मांड में सभी जीव का पेट भर गया। इससे सिद्धांत स्थापित होता है भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को यदि हम भोजन खिलाते हैं इस दुनिया में सब लोग तृप्त हो जाते हैं। और इसी प्रकार हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, देवी देवता, पितृ, गंधर्व सब लोग तृप्त हो जाते हैं। अलग से किसी को तृप्त करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण जो है सबके मूल है, कृष्णा इज रूट ऑफ एवरीथिंग। कृष्ण जो है सबके जड़ है, भागवत प्रमाण है, यथा तरो मूल निषेचन तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथे इंद्रियाणाम तथैव सर्वा अरहणम अच्युतेज्या। ये अच्युत कृष्ण सबके मूल है, जड़। जैसे आपको वृक्ष को बड़ा करना है तो वृक्ष की डाली में पानी डालोगे तो नहीं चलेगा, उसके पत्ते में पानी डालोगे तो उसको पानी नहीं मिलेगा, फूल फल में पानी डालोगे तो नहीं मिलेगा, आपको जड़ में पानी डालना होगा। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालने से डाली पत्ते फल फूल में पहुंच जाता है, वैसे ही कृष्ण का नाम लेने से, कृष्ण की भक्ति करने से शिव, ब्रह्मा, इंद्र, समस्त देवता, पितृ सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सर्वोत्तम है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने यह सिद्धांत सुनाया, यह भागवत सुनाया, और यह भागवत सुनते 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 वह तक्षक नाग आए उनके पहले ही महाराज परीक्षित देख रहे हैं सबके सामने भगवान के पार्षद शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण करके आए हैं। महाराज परीक्षित को उस विमान में बिठाकर भगवान के धाम में लेकर चले गए। बोलिए परीक्षित मोक्ष की
जय।
महाराज परीक्षित भगवान के धाम में चले गए और यहां पर सूत गोस्वामी ने इसका अंत करते हुए भागवत को बंद करते करते एक श्लोक भागवत का अंतिम श्लोक
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम।
भागवत का अंत करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे 88,000 ऋषि मुनियों, मैंने बहुत चरित्र सुनाए, बहुत कथा सुनाई, बहुत उपदेश और बहुत सिद्धांत दिए और यहां पर भी आप लोगों ने बहुत 7 दिन तक सुना, परंतु हो सकता है सब कुछ याद न रहा हो। कोई बात नहीं, भागवत का सार एक श्लोक में बताते हैं। भागवत का समस्त वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों का सार क्या है? कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना और भगवान का नाम भक्तों के साथ में बैठकर लेना, संकीर्तन करना, यही कलयुग का सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा फल है। चहु जुगु चहु श्रुत नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आनी पाऊ। गोस्वामी ने लिख दिया कि चहु जुगु चहु श्रुत चारों वेदों में और चारों युगों में भगवान के नाम की महिमा है, परंतु कलयुग में नाम को छोड़कर भगवान मिलेंगे नहीं। इसलिए नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम लेने से सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, और प्रणामो दुख शमनम, और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने से समस्त दुख प्रणाम समाप्त हो जाते हैं। तम नमामि हरि परम, उस परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ग्रंथ के प्रारंभ में भी प्रणाम करते हैं और ग्रंथ के अंत में भी प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भक्तों, यहाँ पर आपने 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण किया और इस भागवत कथा श्रवण करने का फल तो आपको मिला ही है, परंतु ये जो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, इस सौभाग्य को अपने जीवन में टिका कर रखिएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान की भक्ति तो हमें मिली है, परंतु इस भक्ति को टिकाने के लिए बारंबार इस प्रकार कथा सुनते रहिए। और यदि कोई भक्त नहीं मिलते हैं तो भागवत पढ़िए और साथ ही साथ भगवान का नाम जपिए। कल यहाँ पर बहुत लोगों ने भगवान का नाम लेने के लिए संकल्प लिया, जपमाला ग्रहण की। आप सब लोग भगवान का नाम लीजिए, इसी प्रकार भगवान की कथा सुनिए, इसी में आनंद है, इसी में सुख है, और कलयुग का यही सबसे श्रेष्ठ साधन है। तो यही आशा और अभिलाषा करते हुए मैं यहाँ पर विराम करने जा रहा हूँ और अंत में यहाँ इस गढ़वाल स्थित बेलेश्वर गांव में जितने भी भक्त हैं, सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना और स्तुति करता हूँ। यहाँ पर 7 दिनों में हमने बहुत कुछ कहा, कभी कभी क्रोध से भी कहा और कभी कभी कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल भी हो गया होगा। भक्तों, जो भी कहा, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने की इच्छा नहीं थी, केवल भागवत के सिद्धांत और उपदेश को प्रकट करने की इच्छा थी। लेकिन फिर भी हमारे शब्दों से यदि किसी के हृदय में ठेस पहुंची हो, कष्ट हुआ हो, तो आपका दास समझकर हमें क्षमा कर दीजिएगा। हम झुके हुए थे और झुके हुए रहेंगे, झुके हुए हैं। वास्तव में देखा जाए तो आप सब लोग महान हैं, हम एक तुच्छ आपके सेवक, तुच्छ एक दास हैं। और यहाँ पर रहने में हमारी कई लोग सेवा करते थे, भोजन खिलाना पिलाना रखना, अनेक लोगों की शक्ति, अनेक लोगों का तन मन धन इस आयोजन में लगा है। जिन जिन लोगों ने इस आयोजन करने में भागवत कथा में सहयोग दिया है, सभी भक्तों के लिए मैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन भक्तों को शुद्ध भक्ति प्रदान करें, विशेष करके मधुसूदन प्रभु, कि उनकी कृपा से, उनके आदेश से, उनके अनुग्रह से और उनके प्रयास से आज हम और मुंबई से ये अनेक भक्त आए हैं। और यदि आप मधुचंद जी प्रभु के सानिध्य में रहोगे, मधुचंद जी की बात को स्वीकार करोगे, उनके उपदेश को सुनोगे, तो हम आपसे वादा करते हैं फिर से एक बार हम यहाँ पर आएंगे और फिर से भगवत कथा यहाँ पर सुनेंगे। परंतु एक वर्ष तक आपने जो भी सुना है, जो भी उपदेश यहाँ पर मिला है, भगवान का नाम जपते रहिए और हम जैसे दासों के ऊपर कृपा करते रहिए। और विशेष विशेष धन्यवाद देता हूँ यहाँ के श्रोताओं को, जो बड़े प्रेम से कथा श्रवण किए, जो बड़ी मात्रा में यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग को बहुत काम होता है, बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन फिर भी कृष्ण को अपना समझकर, अपना मानकर, और यहाँ पे आप लोगों के हृदय में कृष्ण के प्रति कुछ ना कुछ प्रेम है, इसलिए आप सब यहाँ पर बैठे हो। तो आप सब भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको सुख शांति और अपनी शुद्ध भक्ति भगवान प्रदान करें। और अंत में आप सभी भक्तों के चरणों में यह कृपा याचना करता हूँ कि इस दास को आप आशीर्वाद दीजिए, कृपा दीजिए, अनुग्रह कीजिए, किसी प्रकार भगवान की कथा हम कहते रहें, सुनाते रहें और आपकी तरह हृदय में भाव रखते हुए भगवान की भक्ति करते रहें। हरे कृष्णा।